Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब हम किसी भी व्यक्ति के माथे पर चंदन लगाते हैं तो उसकी खुशबू हमारे हाथों पर भी आने लगती है। कहीं ना कहीं जब हम किसी भी व्यक्ति को मुस्कुराहट देते हैं, कोई भी तरह की खुशी देते हैं, तो वो खुशी हमारे जिंदगी में भी लहराने लगती है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, जो कि 30 ईयर्स से साइकैट्री को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम टू आवर शो भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति।
डॉक्टर साहब, हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है यूथ के ऊपर। अब हम ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ पर हम चीज़ों को और ज़्यादा बारीकियत से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ यूथ से बातचीत की, हमने जानने की कोशिश की कि ज़िंदगी में उनके लिए बैलेंस ऑफ लाइफ का क्या महत्व है और उसकी परिभाषा क्या है। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं।
जी,
लाइफ में हमारे लिए कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को बैलेंस करना। लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सबको इकट्ठे रहकर बैलेंस करना। स्टूडेंट्स को भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी। आइए हम स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करते हैं।
कॉलेज, जिम, बस दो काम है।
आप अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करते हैं?
डीप ब्रीथ करके, 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 5 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड। और सब काम, जैसे कुछ भी करना है, उसे पहले अच्छे से समझ के फिर करता हूँ।
मैं स्पोर्ट्स में पार्ट लेता हूँ, मतलब खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, मतलब जिम, तो ये सारा कुछ करके, या योगा, सारा कुछ करके लाइफ बैलेंस रहती है, स्ट्रेस नहीं होती।
आप मुझे बताइए, आप अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करते हो?
एक तो मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरा हर काम टाइम टू टाइम हो, और मैं अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, उसके लिए योगा हो गया या ऐसे कुछ। तो ऐसे मैं एक टाइम का ध्यान रखता हूँ मेन में, कि एक टाइम से हर किसी रूटीन में हो तो उसके हिसाब से एक लाइफ की रूटीन बनी रहती है जो अच्छी ढंग से चलती है।
स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन किस तरह से हेल्प करती है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बैलेंस एंड रिमूव करने में?
ये सब चीज़ें हमको बेनिफिट तो बहुत करती हैं। अगर हमारे लाइफ में ऐसा कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करो, आप सब कुछ करो तो आपको अच्छा होगा, इसका बेनिफिट है। अगर हम करके देखो तो हम 10-15 दिन में, अगर महीना भी अगर मेडिटेशन करें, कुछ एक्सरसाइज करें, तो उसका हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। हमारा माइंड का पीस और हर चीज़ में बहुत अच्छा होता है, सो इसलिए इफेक्ट तो है।
डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं, 24 घंटे तो सभी को मिले हैं। हम सुबह से लेकर के जब से हम उठते हैं और जब तक हम सोने जाते हैं, हम कई सारे प्रयास कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज बैलेंस नहीं है सब चीज़ों का, तो कि कोई ना कोई एक प्रायोरिटी वाली चीज़ पीछे छूट जाती है। ऐसे में वो बैलेंस यूथ कैसे क्रिएट करे जिससे उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान बन जाए?
अगर हम ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों को देखें
जी,
तो पहले के समय में कहा जाता था कि ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो पढ़ाई के लिए है, एक हिस्सा जो है वो गृहस्थ के लिए है, एक हिस्सा है जो दुनिया से धीरे धीरे विड्रॉ करने के लिए है, और एक हिस्सा है जो कि पूरी तरह से विड्रॉ करने के लिए।
ओके।
वो जो डिस्टिंक्शंस थी अब नहीं रही, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें जो बाद में होनी होती हैं वो पहले हो जाती हैं।
करेक्ट।
पहले कहा जाता था कि जब तक आप गृहस्थ में एंटर नहीं करते तो उससे पहले की कोई भी चीज़ ना की जाए, पढ़ाई की जाए, सिर्फ जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को किया जाए। तो उस तरह से देखें तो अर्ली यूथ को अगर पहले लें, अर्ली यूथ में तो फिर सारा समय पढ़ाई के लिए होना चाहिए। बट आज अगर आप किसी तो आज अगर किसी से आप पूछेंगे कि आप कितना समय पढ़ाई में लगाते हैं, शायद एग्जाम के बिल्कुल एक महीना पहले वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो,
कई बार दस दिन पहले।
लेकिन समय के साथ साथ और व्यक्ति जिंदगी में क्या चाहता है उसके साथ साथ, किस बैकग्राउंड से आया है उसके साथ साथ, ये प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं। बट बाय एंड लार्ज तीन चार चीज़ें हैं जो उस व्यक्ति की प्रायोरिटीज़ और बैलेंस को डिफाइन कर सकती हैं। एक है, पहली चीज़ जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, जिसके बिना और कोई चीज़ नहीं हो सकती, वो है खुद से खुद का रिश्ता।
करेक्ट।
मैं क्या चाहता हूँ, जब तक ये क्लियर नहीं है तो जो मिलेगा मैं उसके साथ चल पड़ूंगा, जो सामने आएगा उसी में लग जाऊंगा। और यही कई बार होता है, आज आपके पास कोई सारा दिन का प्लान नहीं है, किसी ने फ़ोन किया आप उसके साथ चल दिए, नेक्स्ट डे किसी ने कहा चलो ये काम कर लेते हैं, हमने वो काम कर लिया, और कुछ करने को नहीं है तो दो घंटे के लिए पढ़ रहे। इस तरह से ज़िंदगी आगे टुकड़ों में चलती है, एक कॉन्टीन्यूटी में नहीं चलती। अगर हम अर्ली यूथ की बात करें, जो कि आमतौर पर डिफाइंड है एज 10 to 25 और मैक्सिमम 10 to 30, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो देर तक पढ़ाई कर रहे हैं या जो हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो इस समय में पहले तो पढ़ाई का पूरा होना, यानी आपने जिस चीज़ को चुना है उसमें बेस्ट अपने जीवन के लिए आप रिजल्ट्स लेके उसको फिनिश करें, तो जिसको कहते हैं स्प्रिंग बोर्ड। कई बार अगर हम डाइव मारते हैं तो डाइव मारने से पहले जहाँ से हम कूदते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
True.
तो अगर एक ऊंचाई से कूदेंगे तो आपकी डाइव अच्छी होगी। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में अगर अपने पढ़ाई के क्षेत्र में या जो स्किल्स आपको ज़िंदगी में चाहिए उसके लिए पूरी तरह से ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, तो जो नेक्स्ट पड़ाव है करियर का वो सबसे बेस्ट होगा, उससे शुरुआत बहुत अच्छी होगी। और पढ़ाई के बाद एक्चुअली जो अगला पड़ाव होता है वो होता है करियर का।
जी।
कई बार लोग बहुत जल्दी में अपनी पढ़ाई को कट शॉर्ट कर लेते हैं और कुछ लोगों की ज़रूरत हो जाती है, लेकिन आज के समय में ये बहुत जानना ज़रूरी है कि बाद में जाके वो जो 6 महीने या 1 साल आपने अगर और लगाए होते फुल कंसंट्रेशन के साथ, उसके साथ में और कुछ कर रहे हैं वो एक अलग बात है, तो उससे पूरी ज़िंदगी आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा। वहाँ पे कई बार लोग सोचते हैं कि यही समय है जब खूब मस्ती भी कर लें, फ्रेंड्स कहाँ मिलेंगे, एक न्यू फाउंड फ्रीडम आती है, स्पेशली अगर घर के बाहर रह रहे हैं, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं या किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो बहुत समय और चीज़ों में चला जाता है। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो समय है अपने कैरियर की बिगनिंग करने से पहले की प्रिपरेशन का,
करेक्ट,
वो मिस हो जाता
है।
कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि साथ साथ भी की जा सकती, काम करने के साथ भी, इवनिंग्स होती हैं, वीकेंड्स होते हैं, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो सब किए जा सकते हैं। ये याद रख के कि अगर हम आगे जाकर अपने को सशक्त बनाना चाहते हैं तो जितनी ज़्यादा स्किल्स आएंगी बाहरी रूप से,
बिल्कुल,
वो उतनी अच्छी होंगी। लेकिन कुछ अंदर की स्किल्स होती हैं जिनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, जिनके बारे में बात नहीं होती, उनको सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है।
ओके।
सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये है कि किस प्रकार से मैं अपनी प्रतिभाओं को जानूं। हम में से अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिभाएं हैं। अगर मेरे में किसी प्रकार की उस एरिया में कमी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दूसरों पे विश्वास कम होता है
जी,
या टीम में इकट्ठे चलने की स्पिरिट नहीं है, या बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है, हर चीज़ अभी होनी चाहिए,
करेक्ट,
या अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है,
करेक्ट,
या थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया तो हम एकदम टूट जाते हैं, हमारे मूड्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, सही रूप से अपने आप को एसर्ट नहीं कर पाते, या तो बहुत पैसिव हो जाते हैं या बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, दूसरे को अपनी बात को सही रूप से हम व्यक्त नहीं कर पाते, या ग्रुप्स में बात करने से डरते हैं, ये सारी हमारी पर्सनालिटी की स्किल्स हैं, जो कि अगर हमें मिल जाए, जिनको हम लाइफ स्किल्स भी कहते हैं, तो ये पूरे जीवन तक हमारे साथ चलते, और इसके ऊपर ध्यान देना इस समय में यूथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट वी हैव फाउंड इज़ कि अच्छी इंटेलिजेंस और अच्छी पढ़ाई की बैकग्राउंड आपको एक जॉब की शुरुआत दे सकती है,
पर सस्टेन नहीं कर,
पर सस्टेन करना सक्सेसफुल होना और जो कर रहे हैं उसको बखूबी करना,
बिल्कुल
इसमें इन सॉफ्ट स्किल्स का बहुत बड़ा हाथ है।
Okay.
कुछ लोग इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी नाम देते हैं।
हाँ, इसके तो कोर्सेज भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, काफ़ी सारे बुक्स लिखे गए हैं, पर यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि मोटिवेशन में कहाँ कमी हो रही है। आज अगर हम देखें तो इतने सारे बुक्स बन गए हैं, इतने सारे सेमिनार्स होते हैं, इतने सारे लाइव स्पीकर्स हैं जो बात कर आजकल लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए हेल्प कर रहे हैं। यूथ्स जो आज का है, खास करके मैंने नोटिस किया है कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, पर फिर भी एक अजीब सा खालीपन रहता है। ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्योंकि बैलेंस की कमी हो गई है, हम किसी चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि बाकी सारी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती है। तो वो बैलेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्रिएट कैसे हो, जिससे हमको लगे कि नहीं ज़िंदगी उतनी मुश्किल भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं।
एक्चुअली ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल है,
बिल्कुल
ज़िंदगी अगर एक एक क्षण के साथ जी जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं।
ट्रू।
एंड एक्चुअली सबसे बड़ी खूबसूरत बात ज़िंदगी की ये है कि बाय एंड लार्ज, बहुत ज़्यादा सरकमस्टांसेस ख़राब हों वो मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पर आप किसी कारण से बहुत बाध्य हैं, जहाँ पर किसी तरह के एक्सटर्नल प्रेशर्स इस हद तक हैं कि आप स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाते, बट बाय एंड लार्ज अगर हम चाहें तो किसी भी सिचुएशन को यूज टू हो सकते हैं।
okay.
और यूज टू होने के बाद उसको बेहतर कर सकते हैं। मोटिवेशन की जो आप बात कर रही हैं, मोटिवेशन में आमतौर पे एक्सटर्नल चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं।
करेक्ट।
किसी से कैसे बात करना है, किसी को इम्प्रेस कैसे करना है, किसी की बॉडी लैंग्वेज को रीड कैसे करना है, लेकिन इंटरनल जो है कि मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बनाऊं, मैं अपनी वैल्यूज़ को पहचान कर उनको अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाऊं, मैं किस प्रकार से स्वयं में चिंतन करके जो जो मेरी चिंताएं हैं उनको अलग करके और जो जो मुझे आगे ले जा सकता है उसको कैसे बढ़ाऊं। तो ये जो स्किल्स हैं, ये स्किल्स आमतौर पर एक अच्छे वैल्यू सिस्टम के साथ, एक अच्छे स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के साथ आती हैं
जी।
और वहाँ पे इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ ऐसे लोगों का संग हो, जिसको मैं सत्संग ही कह सकता हूँ। सत्संग का आमतौर पे मतलब लिया जाता है कि आपने कहीं जाके और भजन गाए,
बिल्कुल।
बट वेयर इज सत्संग का असली मतलब है कि सत का संग। अगर आप उसे कुछ लोगों के साथ हैं जो जीवन के इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इन मूल्यों के बारे में बात करते हैं, और कई बार ये कहा जाता है कि यूथ तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आई डिसएग्री। यूथ चाहता है लेकिन वो अपनी भाषा में चाहता है, जो चीज़ें उसको लगे कि लॉजिकल हैं। लॉजिकली अगर हम उनको ये बात बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें अपने में अपनाने के बाद आप एक खुशनुमा जीवन अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने काम वाली जगह के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं।
करेक्ट।
यहाँ पे मेडिटेटिव लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं
जी,
उसकी बात आती है।
ओके।
मेडिटेटिव लाइफस्टाइल का एक्चुअल मीनिंग ये है कि हम मेडिटेटिव स्टेट में रहकर हमारी एक अवस्था हो जिसमें हम स्वचिंतन के साथ और आसपास जो हो रहा है उसको समावेश करके कैसे आगे बढ़ सके।
okay.
और वैसा अगर हमारा लाइफस्टाइल होता है तो शरीर और मन के अंदर कुछ खास तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो हमें सही दिशा लेने में और सही रूप से उसको आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होती है। वैसे अगर मेडिटेशन की ही बात करें
जी,
तो मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को शायद ये बातें नहीं मालूम होगी, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि मेडिटेशन से आप भगवान को पा सकते हैं।
हाँ, ये भी एक मान्यता है।
एक मान्यता है,
बिल्कुल।
लेकिन असली बात ये भी है कि मेडिटेशन करने से आपके मन और शरीर पर रोज़मर्रा की प्रैक्टिकल जीवन के लिए भी पॉजिटिव असर होता है। आप जैसे ही लगातार कुछ दिनों तक मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है।
अच्छा, मतलब मेडिटेशन का हमारे बॉडी पर भी असर पड़ता है?
एब्सोल्युटली।
ओके।
ऐसा देखा गया है कि आफ्टर अबाउट 21 डेज टू 3 मंथ्स, जो समय लगता है धीरे धीरे बॉडी की कंडीशनिंग होने में, तो आप अगर उस स्थिति में जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट कम होनी शुरू हो जाती है, आपके ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होने लगते हैं, आपका मन जो है वो स्थिर होने लगता है, जो ब्रेन की वेव्स हैं जिसको हम ईजी पैटर्न कहते हैं
जी।
वो रिलैक्सेशन की स्थिति में आना शुरू हो जाता है, बॉडी की ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होनी शुरू हो जाती है, स्लीप में भी हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होती है, यानी हमारी जो माइंड की बैटरी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चार्ज होती है।
ओके।
लेकिन मेडिटेशन में स्लीप से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने आप को चार्ज महसूस करते हैं।
ओके।
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक होता है हमारे शरीर के अंदर, जो कि हमें रिलैक्सेशन का अनुभव देता है, और दूसरा होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमें तेज़ी लाने में और खूब काम करने में सहायक होता है। दोनों का बैलेंस भी ज़रूरी है। अगर आप सारा दिन काम करते रहें और रात की नींद ना लें तो बैलेंस बिगड़ जाएगा।
बिल्कुल।
अगर आप मसल्स को सिर्फ पंप करते रहें और उन्हें रिलैक्सेशन ना दें तो भी वो मसल्स ठीक तरह से डेवलप नहीं होंगे।
बिल्कुल।
तो उसी तरीके से मन को भी अगर हम कुछ समय के लिए लोअर गियर में डाल देते हैं, या आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनका कुछ देर के लिए इफेक्ट अपने पे कम कर देते हैं, जो कि मेडिटेशन का प्रोसेस है,
करेक्ट,
तो उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी थॉट्स की कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है।
ओके।
आपकी अटेंशन, कंसंट्रेशन, एक ही चीज़ को जल्दी समझ पाने की शक्ति, उसके बाद उसको याद कर पाने की शक्ति, वो बढ़ सकती है। क्योंकि उस दौरान में जो स्लीप में प्रोसेसेस होने हैं वो उस अवस्था में जागे हुए ही होने शुरू हो जाते हैं।
दिस इज अमेजिंग। अगर ऐसा होने लगे तो हमारी कितनी सारी एनर्जी जो वेस्ट हो जाती है वो सेव होने लग जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें तो जब हम जगे होते हैं, पूरे दिन में कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो हम स्टेबल नहीं रह पाते। मेरे हिसाब से यूथ का मैंने ये नोटिस किया है, खास करके क्योंकि आई एम वन ऑफ देम, हम बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो जब तक हमें वो हासिल नहीं होता हम रेस्टलेस रहते हैं, चाहे वो सिंपल एक रूटीन लाइफ क्यों ना हो।
देखिए, जो एनर्जी और समय
जी
हम डिसीजन लेने में लगा रहे हैं, अगर हम डिसीजन जल्दी ले लें और लेकर उसी पर पक्के हो जाएं
जी,
तो फिर वो एनर्जी जो हैं जो डिसीजन लिया उसको पूरा करने में सहायक होंगी।
करेक्ट।
आपने कहा कि फैमिली का भी कोई फंक्शन है और फ्रेंड्स का भी है, ऐसे मौके कई ज्यादा नहीं आते
नहीं, पर सच अगर बोलूं तो आजकल बहुत ज्यादा आते हैं,
तो शायद
हाँ जी,
शायद कहीं ना कहीं आप ये नहीं देख पा रहे कि दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है।
करेक्ट।
एक छोटा सा फंक्शन है घर का और फ्रेंड की शादी है, दोनों में अगर बैलेंस करें तो ये छोटा सा फंक्शन शायद हर हफ्ते आता हो, कोई ऐसी चीज़ है और वो जिंदगी में एक बार होनी है तो आप उसे चूज कर सकते हैं।
करेक्ट।
अगर मान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोनों चीज़ें तो ज़्यादा देर नहीं आती ज़िंदगी में, लेकिन वहाँ पर भी प्रायोरिटाइज हो सकता है कि कुछ देर के लिए एक जगह गए और एक्सेप्ट कर लिया कि बाकी लोग वहाँ मस्ती करते रहेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में घर वाली बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमेशा के लिए
जी।
तो आपने उस दिन वहाँ पे कम इन्जॉय किया, कम देर के लिए एटलीस्ट, लेकिन कम देर में ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अगर हम इस तरह से हर समय एक डिसीजन लेकर और उस डिसीजन में ज़्यादा समय एनर्जी ना लगाकर और उसको कार्यान्वित कर देंगे, तो आमतौर पर ये जो हमारी ताकत है ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।
करेक्ट।
एक्चुअली शुरू में छोटे छोटे डिसीजंस ना लेने की वजह से जब वो डिसीजन जिंदगी में और बड़े होने होते हैं तो फिर हम उनमें फंसने शुरू हो जाते हैं, फिर उन्हीं में अटकने शुरू हो जाते हैं, और फिर उस कारण से और जो कुछ कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, और फिर ऐसे लगता है कि रोज समय निकल गया लेकिन जो चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, फिर वो नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग आइटम में आ गया।
करेक्ट।
और वही चलता रहता है। वेयर एज अगर आप जो अभी कर रहे हैं उसको बखूबी कीजिए
जी,
पूरा एंजॉय कीजिए उस समय किसी और चीज को। हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं
जी।
कोई व्यक्ति अगर आके यहाँ पे खड़ा हो जाए और हमारी अटेंशन चाहे और मैं बीच में थोड़ा सा उससे बात करूँ, थोड़ा सा आपसे करूँ, तो कोई भी बात समझ नहीं आएगी।
एग्जैक्टली।
तो अगर पूरा फोकस एक चीज पर है और उस फोकस के बाद हमने उस चीज को खत्म किया और फिर उसके बाद उसको जो पहले बात हुई है फुल स्टॉप लगाया, फिर दूसरी चीज पे चले गए और उसको कर लिया, और अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है और ये पहली चीज इम्पोर्टेंट है तो उसको आज के लिए छोड़ दिया, कल कर लेंगे। कहीं नहीं लिखा कि अपनी जिंदगी को हमने किस रूप से चलाना। लेकिन इन सब में सबसे सशक्त मैं हूँ, और असल में मैं के ऊपर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। जो दूसरों ने मेरे साथ किया सिर्फ उसी पे जाता है, मेरा उसमें क्या रोल था या मैं क्या रोल उसमें प्ले कर सकता हूँ, इसके ऊपर बहुत कम जाता है। वहाँ पे जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनकी एक कुछ ट्रेट्स हैं। एक ट्रेट है जिसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं।
ओके।
यानी कि आपने कुछ चीज करनी शुरू की लेकिन वो कुछ देर के बाद अच्छी नहीं चल रही
जी।
तो आप उसे चेंज करने का, मोल्ड करने का अपने में मादा रखते हैं।
करेक्ट।
और उसी में नहीं फंसे रहते कि एक बार डिसीजन ले लिया तो ऐसे ही चलना। दूसरी है कोऑपरेटिवनेस। कोई काम अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने साथ औरों को उसमें कैसे जोड़ सकता हूँ, या कोई और काम अगर हो रहा है उसमें मैं जुड़ के उस काम को कितनी जल्दी मदद के साथ आगे बढ़ा सकता हूँ। तीसरा है ह्यूमिलिटी, और ये ह्यूमिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है सबके लिए, बट यूथ के लिए खास तौर पे। ह्यूमिलिटी फर्स्ट एट अ लेवल कि मैं रियलाइज करूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उससे ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश ना करूँ। दूसरा कि अगर किसी चीज़ में बाकी लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मैं उनको पूरा उसके बारे में इज्जत भी दूँ, ड्यू भी दूँ। कई इश्यूज स्पेशली काम में इस कारण से आ जाते हैं कि बाकियों को लगता है कि ये सारा श्रेय अपने आप ले जाते हैं, ये दूसरों के बारे में बात ही नहीं करते। और खासतौर पे बॉसेस के बारे में ये बात जरूर आती है।
करेक्ट।
जब लोग काम शुरू करते हैं तो उस समय में उनको कई बार ये लगता है कि काम वो करते हैं लेकिन ऊपर वाला नाम ले जाता है।
हाँ, ये चीज अगर हम बात करें कॉलेजेस में तो ये भी होता है कि जो स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, जो उनके थोड़े कम कंपैरेटिवली वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनका होमवर्क वो फटाफट कर देते हैं। बिकॉज अब हम बोलते हैं कि आप मेरे फ्रेंड हो तो आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं तो आप मेरे लिए भी नोट्स बना दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का फेवर जब हम लेते हैं तो खुद को उतना सशक्त बनाने के बजाय हम उस व्यक्ति को उतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि आप मेरा होमवर्क करके दे दो, असाइनमेंट आप मेरा करके दे दो।
अगर किसी ने किसी कारण से, मान लीजिए एक व्यक्ति बीमार है
जी,
और दूसरे ने उसकी मदद की, कल आपने भी उसकी मदद की, दैट इज़ फाइन। लेकिन उससे सीख कर, और मान लीजिए वो अच्छे नोट्स लेता है तो कैसे अच्छे नोट्स लेता है ये देखें, रादर कि उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए क्या वही ये काम मेरे लिए करता है।
True.
क्योंकि बाद में आके उसकी स्किल्स बढ़ रही हैं लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं वो एक्चुअली वही की वही है, और वो पूरी तरह से काम आपको नहीं करने देंगी। इसी तरह से अगर हम चाहें तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को हर समय में जब भी दूसरों के साथ एटलीस्ट डील कर रहे हैं
जी,
तो कोशिश ये करें जिसको हम एम्पथी बोलते हैं कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है, अगर ये भी साथ में लेके चलेंगे तो संबंध, जिनकी वजह से आमतौर पर इस खास उम्र में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि दूसरे को लगता है कि इन्होंने समझा ही नहीं कि मुझे महसूस क्या हुआ। तो अगर आप उसे समझ के चल पाते हैं तो वहाँ पर दूसरे व्यक्ति को हमेशा आपके बारे में ये लगता है कि हाँ ये मेरी बात को समझेगा, और उस वजह से जो मन मुटाव हैं, जो एंडलेस कॉम्पिटिशन्स हैं, जो जेलसीज हैं, वो उस व्यक्ति की कम होती हैं। और क्योंकि वो ऐसे बोझ हैं जो व्यक्ति को नीचे 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 खींचते रहते हैं, तो उस वजह से ज़िंदगी उसके लिए आसान बन जाती है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, हमने कई सारी बातों को छुआ है, कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की है कि किस तरह से यूथ अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, और आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है वो इससे काफ़ी कुछ सीखेगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस
प्लेजर. ओम शांति. ओम शांति.
दोस्तों, आज का एपिसोड में हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से ज़िंदगी में एक संपूर्णता को लाया जाए. खास करके अगर हम यूथ की बात करें तो उनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. खुद का करियर भी बनाना होता है, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना होता है और फ्रेंड्स को भी टाइम देना होता है. लेकिन हमें ये आज जानने की कोशिश की कि अगर करियर बनाना है, किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है, तो एक चीज़ को एक टाइम पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज हमने जानने की कोशिश की कि बैलेंस तभी ही क्रिएट हो सकता है जब एक चीज़ को पूरी तरह से हमारा अटेंशन मिले और उधर हम ग्रोथ की ओर आगे बढ़े. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं. आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान. ओम शांति.